सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ शुद्धात्मने नमः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणं सिद्धमनन्तमणिन्दिय मणुवममपथसौखमणवज्रम् केवलपहोहणिज्य दुन्नयतिमिरं जिनं नमः। यह श्री वीरसेन आचार्य रचित धवला टीका है, जो षटखंडागम ग्रंथ पर लिखी थी, जिसके कर्ता है भूतबलि और पुष्पदंत आचार्य, जिन्होंने श्री धरसेन आचार्य के उपदेश के अनुसार इस षटखंडागम की रचना की थी। और ये उपदेश की जो मूल धारा जो है वो भगवान महावीर के द्वारा जो दिव्य ध्वनि में कथन आया था उसी के अनुसार ये चल रहा है। हमने अभी धवला की पहली पुस्तक पढ़ ली है, उसमें गुणस्थान और मार्गणास्थानों का स्वरूप भी देखा है। अब यहाँ दूसरी पुस्तक यहाँ शुरू करते हैं, तो जो वहाँ पढ़ा था उसी की ये रिवीजन है जैसे। तो इसमें हमें ये जो सारे मार्गणाएँ हैं और गुणस्थान हैं उसके साथ साथ यहाँ 20 प्ररूपणाएँ बताई जा रही हैं। तो ये 20 प्ररूपणा कौन सी है वो सब बातें यहाँ क्रम से आ रही हैं, इसको भी हम पढ़ेंगे। क्या कहते हैं, सत प्ररूपणा के सूत्रों का विवरण समाप्त हो जाने के अनंतर। सत प्ररूपणा, सत यानी अस्थि हयाति, तो हमने वहाँ देखा था जीवों की अस्थि है, तो किसमें, तो गुणस्थानों में और मार्गणाओं में हमने जीव है ऐसा देखा था, तो उसका नाम है सत प्ररूपणा। सत का व्याख्यान उसका निरूपण था। उसमें हमने सूत्र देखे थे 177। अब वो समाप्त हो जाने के अनंतर अब उनकी प्ररूपणा का वर्णन करते हैं। तो प्ररूपणा का वर्णन, तो हमें तो मन में हमारे भी प्रश्न उठता है कि प्ररूपणा क्या चीज है। तो शंकाकार ने भी पूछा कि प्ररूपणा किसे कहते हैं, तो उसका उत्तर देते हैं, सामान्य और विशेष की अपेक्षा गुणस्थानों में, जीव समासों में, पर्याप्तियों में, प्राणों में, संज्ञाओं में, गतियों में, इंद्रियों में, कायों में, योगों में, वेदों में, कषायों में, ज्ञानों में, संयमों में, दर्शनों में, लेशाओं में, भव्यों में, अभव्यों में, सम्यक्तों में, संगी असंगियों में, आहारी अनाहारियों में और उपयोगों में, यहाँ भी 20 प्ररूपणाओं के नाम बताए, इनमें पर्याप्त और अपर्याप्त विशेषणों से विशेषित करके जो जीवों की परीक्षा की जाती है उसे प्ररूपणा कहते हैं। वो क्षा बराबर आया परीक्षा कहा भी है। यहाँ क्या बताना चाहते हैं समाधान में, कि हमने जो गुणस्थान देखे, ये जो 20 प्ररूपणाओं के नाम है, इसमें तो 14 नाम तो मार्गणाओं के हैं, इन एडिशन 6 नाम और है। कौन कौन से, पहले में पहले गुणस्थान, फिर जीव समास। जीव समास किसे कहना, जैसे हमने कितने प्रकार के जीव होते हैं, तो एकेंद्रीय होते हैं, एकेंद्रियों में बादर और सूक्ष्म ये दो भेद हैं, द्विंद्रिय तीन्द्रिय चतुरिंद्रिय पंचेंद्रिय में भी दो भेद है, संगी और असंगी। इन सब के साथ हो गए ना, तो सातों के पर्याप्त और अपर्याप्त ऐसे भेद करेंगे तो 14 जीव समास होते हैं, उसको जीव समास कहते हैं। तो एक तो गुणस्थान, दूसरी प्ररूपणा जीव समास, फिर पर्याप्ति उनमें कितनी होती है, जैसे संगी पंचेंद्रियों में 6 पर्याप्ति होती है। पर्याप्ति किसे कहना, तो अन्य गति से मरकर जीव आता है तो शरीर ग्रहण के पहले समय से ही उसके पर्याप्ति शुरू हो जाती है। तो सबसे पहले आहार पर्याप्ति, फिर शरीर पर्याप्ति, इंद्रिय पर्याप्ति, श्वासोश्वास पर्याप्ति, भाषा पर्याप्ति और मन पर्याप्ति, तो संगी पंचेंद्रियों को ऐसे छह पर्याप्ति होती है। असंगियों को मन पर्याप्ति नहीं होगी, उनके मन ही नहीं है, तो उनके पांच पर्याप्ति होती है। और एक यानी द्विंद्रिय से लेकर असंगी तक पांच पर्याप्ति, और एक इंद्रियों को वचन भी नहीं है इसलिए उनको चार ही पर्याप्ति होती है ना। तो ऐसे संगियों में छह, असंगी से लेकर नीचे द्विंद्रिय तक पांच, और एक इंद्रियों को चार। तो गुणस्थान, जीव समास, पर्याप्ति, फिर प्राण और संज्ञा। संज्ञा ने आहार, भय, मैथुन, परिग्रह, इसको वो संज्ञा कहते हैं। जो तीव्र इच्छा होती है, वासना होती है जीवों की, तो उसको कहते हैं संज्ञा। ये सबका विस्तार से वर्णन आने वाला है। तो ये पांच नाम, उसके बाद क्रम से 14 मार्गणा, यानी गति, इंद्रिय, काय, योग, वेद, कषाय, ज्ञान, संयम, दर्शन, लेशा, भव्य, सम्यक्त्व, संगी और आहार, जो अभी अभी हमने पहले भाग में देखे थे। और अंत में उपयोग नाम की एक प्ररूपणा है। इस तरह ये जो 20 प्ररूपणा है, तो उसमें वो पर्याप्त, पर्याप्त आदि यानी सभी विशेषों के साथ जीवों का वर्णन इसमें किया जाएगा। तो एक एक कॉलम में यानी एक एक प्ररूपणा में कौन कौन सी बातें आएगी उसकी अभी चर्चा करेंगे। कहा भी है, अब 222 नंबर की गाथा ऊपर पढ़ते हैं। गुण जीवा पचति पाणा सन्नायम गणा होय उवजोगो वियकमसो विसंतु परुवणा भणिया। ये 20 प्ररूपणाओं के नाम इसमें इतने एक गाथा में बता दिए। कैसे? गुणस्थान, जीव समास, पर्याप्ति, प्राण, संज्ञा, फिर 14 मार्गणाएं और उपयोग। आसान है ना? अभी ऐसे क्रम से, इस प्रकार क्रम से 20 प्ररूपणाएं कही गई है। देखो गाथा में गुण यानी गुणस्थान, जीवा यानी जीव समास, पज्जति यानी पर्याप्ति, पाण यानी प्राण, सन्न यानी संज्ञा, मगणाओ यानी मार्गणाओ 14 मार्गणा, और वो जोगो यानी उपयोग। इस तरह से क्रम से 20 प्ररूपणाएं कही जाती हैं। अब हम आगे देखेंगे। 20 प्ररूपणाओं में से, ये जो अभी हमने देखे 20 प्ररूपणा, उनमें से 3 प्ररूपणाओं को छोड़कर शेष प्ररूपणाओं का अर्थ पहले कहे आए हैं। यानी जीव समास की चर्चा हमने की थी, गुणस्थान तो डिटेल में देखे ही देखे हैं, और पर्याप्ति की भी चर्चा की थी, परंतु भी प्राण, संज्ञा और उपयोग, इन तीन की चर्चा नहीं की थी। वो अभी थोड़ी करेंगे, क्योंकि ये पहले भाग में इसकी हमने चर्चा देखी थी। देखो क्या कहते हैं, 20 प्ररूपणाओं में से 3 प्ररूपणाओं को छोड़कर शेष यानी रिमेनिंग प्ररूपणाओं का अर्थ पहले कहे आए हैं। अतः यहाँ पर प्राण, संज्ञा और उपयोग, इन 3 प्ररूपणाओं का अर्थ कहते हैं। अब प्राण की बात शुरू करेंगे। पहले उसकी डेफिनेशन बताते हैं कि जिनके द्वारा जीव प्राणिति अर्थात जीता है उन्हें प्राण कहते हैं। वैसे तो जीव तो हमेशा ही जीता है, क्योंकि उसका नाम क्या है? जीव है। यानी जो अनादि से जीता था, अभी जी रहा है और अनंत काल तक जिएगा, तो उसको जीव कहते हैं। यानी उसके जो चैतन्य भाव प्राण है, उसकी जो सत्ता है, उसका ज्ञान है, दर्शन है, आनंद है, आदि रूप से जो उसका अस्तित्व हमेशा बना रहेगा, तो उसको कहते हैं वो उसका जीवन है। तो उसका जीवन कभी खत्म ही नहीं होगा। अब यहाँ जो प्राणों की चर्चा है, जिसको द्रव्य प्राण कहते हैं, यानी शरीर का संयोग होना, वियोग होना आदि अपेक्षाओं से जो कहे जाते हैं, तो उसको यहाँ प्राण कहें। प्राण यानी यहाँ जो चैतन्य का व्यापार है उसको प्राण कहेंगे। यानी जानने रूप जो कार्य हमारे दूसरों को भी ख्याल में आते हैं ना कि यहाँ जीव है, हम कहते ना अरे ये जी रहा है, ये पेशेंट अभी जी रहा है क्या मरा, तो उसके टेस्ट करके देखते हैं, उसके कुछ ज्ञान कुछ वहाँ ख्याल में आता है, डॉक्टर चेक करके देखते हैं ना कि उसको कुछ शरीर की क्रियाएं चल रही है या कोई उसको स्टिमुलेट करते हैं, पेन है तो उसको जानने में आता है, आदि आदि बातें देखते हैं। तो उन प्राणों की यहाँ चर्चा है जिसको द्रव्य प्राण कहे जाते हैं। तो शंकाकार पूछता है वे प्राण कौन से हैं? समाधान, पांच इंद्रिया, इंद्रिया ने इंद्रिय प्राण, यानी द्रव्येंद्रिया का वो इंद्रिया नहीं, पांच इंद्रिया जब कहेंगे, पांच इंद्रिय प्राण, यानी पांचों इंद्रियों द्वारा जो जानने का कार्य होता है उसको इंद्रिय प्राण कहते हैं। मनोबल, वचन बल और काय बल, ये तीनों को मिलकर एक बल प्राण कहेंगे, यानी वो उसका क्राइटेरिया है। एक इंद्रिय प्राण में कितने हैं, तो हर एक द्विंद्रिय तीन्द्रिय हर एक के अलग अलग हो गए, तो इंद्रिय प्राण वाली एक कैटेगरी, बल प्राण वाली एक कैटेगरी, श्वासोश्वास प्राण और आयु, ये मुख्य चार भेद। फिर उसमें संगी पंचेंद्रियों में कितने होते हैं, असंगी में कितने हैं, उसकी बात करेंगे हम। तो मैक्सिमम हो गए तो 10 प्राण हो गए। तो पांच इंद्रिया, मनोबल, वचन बल, काय बल, उच्छ्वास निश्वास और आयु, ये 10 प्राण हैं। इन पांचों इंद्रिय प्राणों का एकेंद्रिय जाति आदि पांच जातियों में अंतर्भाव नहीं होता है। क्या कहते, कोई कहेगा ये जो आपने प्राण कहे और हमने एकेंद्रिय जाति, दो इंद्रिय जाति, तीन इंद्रिय जाति भी देखे थे, तो पंचेंद्रिय जाति देखी, तो पंचेंद्रिय जाति और ये इंद्रिय प्राण, पांचों इंद्रिय प्राण एक ही बात है, तो उसी में उसको आप इंक्लूड कर दो, अलग से प्राणों का कथन क्यों करते हैं। तो ये दोनों ही एक नहीं है ऐसा बता रहे हैं। पंचेंद्रिय जाति अलग बात है और पांच इंद्रिय प्राण अलग बात है, उसका कारण बताते हैं। क्योंकि चक्षु इंद्रिया वरण आदि कर्मों के क्षोभशम निमित्तक इंद्रिय प्राणों की एकेंद्रिय जाति आदि जातियों के साथ समानता नहीं पाई जाती है। एकेंद्रीय जाति यानी जीव का जो एकेंद्रियपना है, जो एकेंद्रिय में जो जीव है उसको कहेंगे ये एकेंद्रिय जाति है, और उनमें जो ज्ञान का कार्य है, ज्ञान का व्यापार है, तो उसके लिए उस इंद्रियावरण कर्म जो है विशिष्ट ज्ञानावरण कर्म, उसका क्षोभशम पाया जाता है। उस क्षोभशम को हम वहाँ वो इंद्रिय प्राण कहेंगे, और वो जाति अलग है और वो प्राण अलग है, ख्याल है ना, ये दो भिन्न भिन्न जाति बातें हैं। यानी एकेंद्रियों में एकेंद्रिय प्राण, वो एक स्पर्शन इंद्रिय प्राण होगा, पंचेंद्रिय जाति वाले जीव में पांच इंद्रिय प्राण होंगे, ख्याल है ना। उक्त पांचों इंद्रिय प्राणों का इंद्रिय पर्याप्ति में भी अंतर्भाव नहीं होता। पर्याप्तियों में भी हमने ऐसे ही नाम देखे थे, इंद्रिय पर्याप्ति, तो इंद्रिय पर्याप्ति अलग बात है और इंद्रिय प्राण अलग बात है। इंद्रिय पर्याप्ति में इंद्रियों के द्वारा जानने की जो शक्ति है, जैसे चक्षु इंद्रिय के द्वारा रूप को जानने की शक्ति, अब ये शक्ति डेवलप होने के लिए एक अंतर्मूर्त लगता है, उसको कहते पर्याप्ति पूर्ण हुई। और वो पर्याप्ति पूर्ण होने के बाद वो चक्षु इंद्रिय के द्वारा जानने का कार्य चलेगा, वो कार्य को प्राण कहेंगे, और वहां जो शक्ति उत्पन्न हुई है उसको, वो कारण हुआ तो उसको पर्याप्ति कहेंगे। तो पर्याप्ति कारण है और प्राण उसका कार्य है, है ना। देखो इसको फिर पढ़ते कि इंद्रिय प्राण अलग बात है और इंद्रिय पर्याप्ति अलग बात है। तीसरी लाइन, उक्त पांचों इंद्रिय प्राणों का इंद्रिय पर्याप्ति में भी अंतर्भाव नहीं होता, यानी उसमें वो इंक्लूडेड नहीं है, दिस इज अ डिफरेंट एंटिटी, क्योंकि चक्षु इंद्रिय आदि को आवरण करने वाले कर्मों के क्षोभशम स्वरूप इंद्रिय प्राणों को, यानी इंद्रिय प्राण किसको कहते हैं, वो इंद्रियावरण कर्म का जो क्षोभशम है उसको इंद्रिय प्राण कहेंगे, बराबर। और क्षोभशम की अपेक्षा बाह्य पदार्थों को ग्रहण करने की शक्ति के उत्पन्न करने में निमित्तभूत पुद्गलों के प्रचय को, उसको पर्याप्ति कहते हैं। एक होने में विरोध है, क्या कहा फिर, जो विशिष्ट इंद्रिय के द्वारा जानने की जो क्षोभशम रूप शक्ति है, जो जितना क्षोभशम है, कर्मों का क्षोभशम रूप जो है उसके द्वारा जो जानने का कार्य होगा वो तो प्राण है, और जो बाह्य पदार्थों की जानने की शक्ति और उसके निमित्तभूत वहां जो पुद्गल का प्रचय, प्रचय ने संचय यानी द्रवेंद्रिया बनी है आदि जो है, और वहां के पुद्गलों में जो कुछ स्कंधों का ग्रहण होना छोड़ना जो कुछ बातें चलती है तो वो पर्याप्ति में आ जाती है। तो वो दोनों भिन्न भिन्न बातें। उसी प्रकार मनोबल का मन पर्याप्ति में भी अंतर्भाव नहीं होता, यानी मन पर्याप्ति अलग बात है और मनोबल प्राण अलग बात है, क्योंकि मनोवर्गना के स्कंधों से उत्पन्न हुए पुद्गल प्रचय को और उससे उत्पन्न हुए आत्मबल यानी मनोबल को एक होने में विरोध आता है। हमने देखा था मन द्रव्य मन है, उसकी रचना मनोवर्गना से होती है। मनोवर्गना नाम के जो पुद्गल स्कंध है उससे द्रव्य मन की उत्पत्ति होती है, और ये मनोवर्गना के स्कंध पुद्गल परमाणु का ग्रहण और छोड़ना सतत चलता रहता है। मन के द्वारा जो जानने का कार्य चलता है तो वहाँ आत्मा की जो उसमें चलती है ना उसकी प्रवृत्ति, तो ये पर्याप्ति जो है वो जो पुद्गल प्रचय से जो उत्पन्न हुआ मन है तो उसको हम पर्याप्ति कहेंगे, और वहाँ जो जानने रूप कार्य है आत्मा की जो वहाँ आत्मबल है वो है मनोबल। मनोबल ये प्राण है और ये जो मन पर्याप्ति है उसमें वो आत्मा की शक्ति भी लेना और पुद्गल का प्रचय भी लेना, पुद्गल से दोनों मिलकर पर्याप्ति हुई। हाँ, पर्याप्ति में दोनों को लेते हैं, आत्मा की शक्ति को भी और विशिष्ट पुद्गल परमाणुओं का जो वहाँ प्रचय हुआ उसको भी, दोनों को मिलकर सभी में ऐसा है। पुद्गल का प्रचय भी सभी में लिया है, आत्मा की शक्ति डेवलप होने के लिए भी अंतर्मुहूर्त लगता है और वहाँ जो पुद्गल का प्रचय होता है क्योंकि आत्मा उन पुद्गलों का स्कंधों का अवलंबन लेता है वहाँ। जैसे अभी इंद्रिय पर्याप्ति में आत्मा में भी जानने की शक्ति वहाँ से होती है, यहाँ अभी सब चक्षु इंद्रिय है तो यहाँ ये चक्षु इंद्रिय है, वहाँ की वहाँ से उसको रूप का ग्रहण होगा और वहाँ जो पुद्गलों का भी कुछ स्ट्रक्चर तैयार होगा। जैसे आँखों के अंदर वाले जो कोई वहाँ के द्रवेंद्रिया है उनकी रचना होती है, तो ये पुद्गल प्रचय और आत्मा की शक्ति ये सब मिलकर पर्याप्ति हुई, और वहाँ जो जानने रूप कार्य होगा वो तो प्राण होगा। हर एक में इसे, हर एक पर्याप्ति प्राण में ऐसा समझना। हाँ, अब वचन बल की बात करते हैं। देखो नीचे से आठवीं लाइन, सातवीं लाइन है, तथा वचन बल भी भाषा पर्याप्ति में अंतर्भूत नहीं होता, यानी भाषा पर्याप्ति को भी कारण कहना और वचन बल ये उसको प्राण यानी उसका कार्य होगा, क्योंकि आहार वर्गणा के स्कंधों से उत्पन्न हुए पुद्गल प्रचय का और उससे उत्पन्न हुई श्रोत्रेंद्रिय के द्वारा ग्रहण करने योग्य पर्याय से परिणमन करने रूप शक्ति का परस्पर समानता का अभाव है। क्या कहते हैं, ये तो आहार वर्गणा से पुद्गल प्रचय उत्पन्न हुए और आत्मा में शक्ति कौन सी हुई, श्रोत्रेंद्रिय के द्वारा सुनने की शक्ति हुई, बराबर। और दूसरे क्या, वचन बल क्या है, तो वचन बल तो उसका कार्य होगा, वचन बल प्राण कहा जाता है और भाषा पर्याप्ति ये कारण है और वचन बल प्राण ये उसका कार्य है। अब काय बल में भी ऐसे ही लगाते हैं, देखो तथा काय बल का भी शरीर पर्याप्ति में अंतर्भाव नहीं होता, क्योंकि अभी शरीर पर्याप्ति किसे कहना उसको पहले बताते हैं। वीर्यांतराय के उदयाभाव और उपशम से उत्पन्न हुए क्षोपशम की यानी वीर्यांतराय नाम का जो कर्म है उसका क्षोपशम और खलरस भाग की निमित्तभूत शक्ति के कारण पुद्गल प्रचय की एकता नहीं पाई जाती है। काय बल में वीर्यांतराय का क्षोपशम लेना, जैसे हमने ज्ञानावरण का क्षोपशम लिया है, ज्ञानावरण के साथ साथ वीर्यांतराय का भी क्षोपशम पाया जाता है, बराबर। तो वीर्यांतराय का क्षोपशम एक बात, और दूसरा कौन सा कि पुद्गल का प्रचय। तो जो हमने देखा था सबसे पहले आहार पर्याप्ति जो है, आहार पर्याप्ति है, शरीर पर्याप्ति है, तो उसमें क्या होता है, खल रस भाग की निमित्तभूत शक्ति के कारण पुद्गल प्रचय यानी जब जीव कहीं से मरकर आता है तो आहार वर्गणा का ग्रहण होता है तो उसको खल रूप और रस रूप परिणाम आता है। तो पुद्गल का ग्रहण और उसको खल रूप रसरूप परिणामने की शक्ति, शक्ति भी उत्पन्न होती है, वो रसरूप खल रूप परिणमता भी रहता है, वो पुद्गल प्रचय कहलाएगा। रसरूप खल रूप यानी वो लिक्विड सॉलिड ऐसे उसके डिफरेंस करेगा उसमें से, यानी हो जाएगी आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति। और उसके पश्चात ये जो विशिष्ट क्षोभशम है वहाँ पर, ज्ञान का जो कार्य होगा वहाँ, या शरीर का जो बल होगा, तो वो काय बल प्राण होगा। इसी प्रकार उच्छ्वास निश्वास प्राण कार्य है, जो आत्म उपादान कारणक होता है, यानी आत्मा के उपादान से ये होता है। कौन सा? उच्छ्वास निश्वास कार्य वाला। और उच्छ्वास निश्वास पर्याप्ति जो है वो कारण है। इन शॉर्ट ऐसा समझना, जो शक्ति है वो कारण है, और शक्ति के वहाँ जो कार्य होगा उसको प्राण कहेंगे, शक्ति को पर्याप्ति कहेंगे, और जो कार्य होता है उसको प्राण कहेंगे। और ये जो पर्याप्ति है वो जो पुद्गल उपादान निमित्तक होती है, पुद्गलों के बाद पा शब्द, पा एक अक्षर डालना, पुद्गलो पा, पुद्गलो पादान निमित्तक होती है। अतएव इन दोनों में भेद समझ लेना चाहिए, यानी यहाँ इन शॉर्ट सभी प्राण और पर्याप्तियों में क्या डिफरेंस है ये समझाया है। पर्याप्ति तो शक्ति भी है और पुद्गल का प्रचय भी है, और प्राण में वहाँ वहाँ वैसे वैसे ज्ञान का जो कार्य चलेगा उसको प्राण कहा है। तो ये प्राणों में हम थोड़ा सोच लेते हैं कि पंचेंद्रिय जीवों को 10 प्राण होते हैं। हमने 4 ग्रुप देखे थे, इंद्रिय प्राण, बल प्राण, श्वासोश्वास और आयु। तो भी जो संगी पंचेंद्रिय जीव है, तो इंद्रिय वाले में कितने उसके इंद्रिया है? इंद्रिया कितनी है पंचेंद्रिय जीवों को? 5 इंद्रिया। तो 5 इंद्रिया, बल प्राण में 3 बल प्राण, मन बल, वचन बल, काय बल, एक श्वासोश्वास, आयु, तो कितने हुए? 10 हो जाए। बराबर। अभी असंगी जीवों में मन बल नहीं होता है, तो उसके 9 प्राण। अभी ये 9 में से चतुर इंद्रिय जीवों को एक इंद्रिय कम हो गई, उसमें 8 प्राण हुए, 3 इंद्रिय में 7 हुए, 2 इंद्रिय में 6 हुए। अब जो एक इंद्रिय है उसमें वचन बल भी चला जाएगा, वचन बल भी नहीं है और एक इंद्रिय भी कम हो गए, तो उसमें 4 ही प्राण हो गए। अब ये तो पर्याप्त जीवों के हो गए, सभी पर्याप्त जीवों में है, आयु तो सभी में है, पर्याप्त हो या अपर्याप्त हो आयु तो पाई ही जाती है, आयु तो सब में होगी। हाँ, अब अपर्याप्तों में क्या नहीं होगा? तो अपर्याप्तों में भले संगी हो तो भी मन बल, वचन बल अपर्याप्त अवस्था में नहीं होता है, पर्याप्त होने के बाद उसको वो पाया जाता है। काय बल तो अपर्याप्त को भी है, यानी मन बल, वचन बल नहीं और श्वासोश्वास भी नहीं होता, तो संगी में 3 कम हो गए, तो संगी के पर्याप्त के प्राण हो गए 10 और अपर्याप्तों के हो गए 7, 3 कम हो गए ना। असंगी में 9 पर्याप्त के, उसको मन बल है ही नहीं है, तो अपर्याप्त में एक वचन बल निकालना और एक श्वासोश्वास निकालना, तो 9 और 7। ऐसे नीचे नीचे भी चतुर इंद्रिय के 8 और 6, फिर 7 और 5, फिर द्विंद्रियों के 6 और 4, और एक इंद्रियों में 4 होते हैं और श्वासोश्वास गया तो 3, इस तरह से। और केवली भगवान में, संयोग केवली में 4 पाए जाते हैं, क्योंकि उनके इंद्रिय प्राण नहीं है, इंद्रियों के द्वारा जानना नहीं होता है, तो वहां तो कौन कौन से 4 हो गए? मन बल प्राण भी नहीं है, मन के द्वारा जानना भी नहीं हो रहा है, द्रव्यमन तो बना बनाया है, तो वो बना पड़ा है परंतु उसके द्वारा जानना नहीं होता। तो वचन बल है, क्योंकि दिव्य ध्वनि कीर्ति है ना, हाँ, वचन बल है, काय बल है, श्वासोश्वास है, आयु है। और जब समुद्घात करते हैं उस अवस्था में, अपर्याप्त अवस्था कहलाती हो, तब उनके श्वासोश्वास नहीं है और वचन भी उस समय नहीं है, तो काय बल और आयु ये 2 प्राण होंगे। ये बातें क्रम से आएगी, जब जब आएगी तब हम फिर चर्चा करेंगे, तो अभी तो इतनी हम प्राणों के बारे हमने बातें देखी। अब संज्ञा जो है वो 4 प्रकार की है, आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा और परिग्रह संज्ञा, ये चार संज्ञाएं कहलाती हैं। तो कहा भी है ऊपर, हम ऊपर हम देखते हैं अभी, संज्ञा का अर्थ भी कहा है यहाँ। देखो संज्ञा में उसका अर्थ होता है कि वासना जिसको कहते हैं, इस गाथा में उसी का अर्थ किया। देखो पहले गाथा पढ़ेंगे, इह जाहि वाहि आविय जीवा पावन्ति दारुणं दुःखं सेवन्ताविय उभये ताओ चत्तारि सन्नाओ। देखो पहले संज्ञा कहते किसे है, उसकी डेफिनेशन बता रहे। इस लोक में जिनसे बाधित होकर, यानी इन संज्ञाओं से बाधित होते, संज्ञा ने वहाँ इच्छा उत्पन्न होना, हम कहते हैं जीवों को आहार की इच्छा, भय उत्पन्न होना, मैथुन वाला और परिग्रह, यानी परिग्रह तो मतलब ममत्व भाव पर पदार्थों के प्रति, और उसका संचय करने की जो वृत्ति वो परिग्रह संज्ञा। तो जिनसे बाधित होकर, यानी ये जो इच्छाएं उत्पन्न होना, ये तो बाधित होना है, बाधा है, और इससे जो बाधित होते हैं क्या करते हैं, फिर उसका सेवन करते हैं, यानी आहार की इच्छा उत्पन्न होने पर वो आहार का सेवन करते हैं, भय की इच्छा होती है तो भागते हैं, ऐसा सर्व सब में समझना। तो जिनसे बाधित होकर तथा जिनका सेवन करते हुए ये जीव दोनों लोकों में दारुण दुख को प्राप्त होते हैं। पहले कहा इस लोक में वो बाधित होते हैं, इस लोक यानी यह लोक यानी अभी वर्तमान का जीवन, और परलोक यानी आगामी नेक्स्ट भाव। तो यह लोक और परलोक, तो अभी जो ये चार संज्ञाएं, ये जो दारुण जो इच्छा उत्पन्न होती है उससे अभी जो पीड़ित होते, बाधित होते यानी पीड़ित होते, अभी उनको इच्छा उत्पन्न होना यही दुख है ना। तो ये दुख से जो अभी पीड़ित होते हैं और उसका उपाय करने के लिए कुछ करते हैं, तो उससे क्या होता है, इस लोक में तो दुखी है ही है, परलोक में भी दुखी होते हैं। इसको फिर पढ़ते देखो, इस लोक में जिनसे बाधित होते, यानी जिन संज्ञाओं से बाधित होकर यानी पीड़ित होकर तथा जिनका सेवन करते हुए ये जीव दोनों लोकों में दारुण दुख को प्राप्त होते हैं। हमें तो लगता है कि हम भोजन आदि करके बहुत अच्छा चीज़ें बनाकर खाई तो हम सुखी हो गए, तो यहाँ क्या कहते हैं, इतना सारा खाने की इच्छा ये दुख है और उसका सेवन करते हुए हम दुखी होते हैं, तो उन्हें संज्ञा कहते हैं, इसका नाम है संज्ञा। उसके चार भेद हैं, आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा और परिग्रह संज्ञा। अब एक एक को एक एक गाथा द्वारा समझाएंगे हम, 224 को पढ़ेंगे ऊपर। आहार दंसनेन तस्व जोगेन ओम कोठाए सादि दरुदीर्णाए हवदिहु आहार सन्नाहु। आहार संज्ञा के कारण क्या है उसकी अब मीमांसा करते हैं। आहार के देखने से हम देखते ना, वो तो भोजन बनाए देखकर खाने की इच्छा होती है, टीवी में कुछ कुछ दिखाते हैं फिर खाने की इच्छा होती है, बच्चे भी वो टीवी के एडवर्टाइजमेंट देख देख कर मांगते हैं कि नहीं। उसका उपयोग होने से यानी उसके बारे में सोचने से, हाँ, पेट के खाली होने से तथा असाता वेदनीय कर्म की उदीर्णा होने से जीव के नियम से आहार संज्ञा होती है, यानी ये जो क्षुधा है, क्षुधा उसका कारण क्या है, असाता वेदनीय नाम का जो कर्म है उसकी उदीर्णा होना, उदीर्ण होने ने अधिक मात्रा में उसके परमाणु खीर के उदय होना, तीव्र उदय होना, उसको उदीर्ण कहते हैं। उदय तो चल ही रहा था, उसमें और ऊपर ऊपर के जो भविष्य में उदय आने योग्य जो परमाणु है वो जल्दी आकर खीर जाते हैं। तो वहाँ हम देखते हैं ना बच्चों को, अभी अभी तो खेल रहे थे, खाने को बुलाए तो भी नहीं आते, और 2 मिनट चले जाए, मम्मी मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है, अरे अभी तो भूख नहीं थी ना, तो ये इसको कहते उदीर्ण। तो हम तो देखते हैं मुनियों को क्यों नहीं है सातवें गुणस्थान में, और आगे उनके आहार की इच्छा ही नहीं होती है, आहार की प्रवृत्ति तो है ही नहीं है, मगर वहाँ इच्छा भी नहीं, ऐसा भी नहीं कि इच्छा हुई और उन्होंने दबाई, तो क्यों नहीं है। तो ये छठे गुणस्थान तक ही असाता कर्म की उदीर्णा होती है, उसके आगे उदीर्णा नहीं पाई जाती, इसको कहते हैं असाता की उदीर्णा। तो जो लोग कहते हैं केवली भगवान को भी केवल आहार होता है, वो भी आहार लेते हैं, वो कितनी बात झूठी होगी, क्योंकि छठे गुण स्थान से आगे उदीरना नहीं है। तो सातवें, आठवें, नौवें, दसवें, ग्यारहवें, कहीं पर ऊपर उदीरना हो ही नहीं सकती, क्योंकि उदीरना वहाँ ही स्टॉप हो गई, उसको कहते विच्छित्ति हुई, उदीरना का अभाव हो गया। अब उसके ऊपर के गुण स्थानों में उसकी उदीरना नहीं पाई जाएगी कहीं भी, इसलिए ऊपर कहीं भी आहार की इच्छा ही नहीं होगी, और इच्छा भी नहीं होगी और उसका आहार का कार्य भी नहीं होगा। तो ये आहार संज्ञा की बात की। अब ये भय संज्ञा क्यों उत्पन्न होती है, तो 225 गाथा हम देखेंगे। अई भी मदनसनेण तस्व जोगेण ओम सत्य भयकम उदीरणाये भय सन्ना जाय दे चदुहिम। अत्यंत भयानक पदार्थों के देखने से, उनका ख्याल होने से, यानी उसका विचार मन में आए तो भी, शक्ति के हीन होने से और भय कर्म की उदीर्णा होने से, इन चार कारणों से भय संज्ञा उत्पन्न होती है। हमें भय क्यों लगता है, तो उसके ये कारण बताए। हम देखते हैं कोई टीवी पर सीरियल है या कोई पिक्चर ऐसी होती है भयानक, तो उसके देखने के हमें भी डर लगता है, तो इसके अलग अलग ये कारण है। अब आगे 226वीं गाथा पढ़ेंगे। यहाँ भी मैथुन संज्ञा की बात बता रहे हैं। पणिदर सभो यणेणय तस्व जोगे कुशील सेवाए वेदस्सुदीर्णाए मेहुण सन्ना हवदि एवं। स्वादिष्ट और गरिष्ठ रसयुक्त पदार्थों का भोजन करने से, जिसको हम कहते हैं हेवी खाने से, उस ओर उपयोग होने से, कुशील का सेवन करने से और वेद कर्म की उदीर्णा होने से मैथुन संज्ञा उत्पन्न होती है। वेद कर्म यानी हम मालूम है स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुसक वेद, उसको वेद कर्म कहलाता है। वो कौन से कर्म का भेद है वो मालूम है? आठ कर्मों में से कौन से कर्म का भेद है वेद वाला कर्म? हाँ, मोहनी, वो वेदनीय वाला वो नहीं है। ये वेद कर्म है ने, वो पुरुष वेद, स्त्री वेद, नपुसक वेद, जो हम नौ कषाय कर्म, हाँ उसका ये भेद है। तो ये मैथुन संज्ञा उत्पन्न होती है। अब अगला 227। उवयरण दंसनेण तस्व जोगेण मुच्छिदाय लोहस्सुदीर्णाये परिग्रहे जाय दे सन्ना। भोगोपभोग के उपकरण देखने से, हमें शॉपिंग तो नहीं करनी थी, खाली बाजार में घूम आए, तो भी वो देख देख कर लेने की इच्छा होती ना ये अपने अनुभव की बात है क्यों उनका ख्याल होने से, यानी वो विचार करते हैं तो, मूर्छा के होने से, उसमें ममत्व भाव जो है मोहित होना, लोभ कर्म की उदीर्णा होने से, इस वर्ण लोभ का एक प्रकार है ना, विशिष्ट प्रकार परिग्रह संज्ञा, तो लोभ होने से, इन्हें लोभ कर्म की उदीर्णा होने से परिग्रह संज्ञा उत्पन्न होती है। इसलिए जब तक लोभ कर्म का उदय है तब तक हम परिग्रह संज्ञा कहेंगे। तो लोभ कर्म का उदय कहाँ तक है, कौन से गुणस्थान तक? लोभ का सूक्ष्म लोभ कहाँ तक है? नहीं 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 नहीं, दसवें के अंत तक। सूक्ष्म सांप्राय किसका नाम है? दसवें गुणस्थान का। हाँ, तो दसवें में है, ग्यारहवें में तो पूर्ण वितराग हुआ है, उपशांत कषाय है, और बारहवा भी पूर्ण है, तो ये दसवें के अंत तक परिग्रह संज्ञा कहेंगे हम। अब प्रश्नकार प्रश्न पूछता है, मैथुन संज्ञा का वेद में अंतर्भाव हो जाएगा, यानी उसका कहना है मैथुन संज्ञा कहो या वेद कहो एक ही बात है, क्योंकि यहाँ क्या है, संज्ञा नाम की एक अलग प्ररूपणा है और वेद नाम की एक अलग प्ररूपणा है। तो ये मैथुन जो संज्ञा में आपने बता दिया तो वेद में इंक्लूड हो जाती है, तो ये अलग से संज्ञा क्यों कहते हो, ऐसा उसका प्रश्न है। उसका समाधान, नहीं, क्योंकि तीनों वेदों के उदय सामान्य के निमित्त से उत्पन्न हुई मैथुन संज्ञा और वेदों के उदय विशेष स्वरूप वेद, इन दोनों में एकत्व नहीं बन सकता। क्या कहते हैं? मैथुन संज्ञा कहते हैं तब उसमें हम डिफरेंस नहीं करते कि ये पुरुष वेद है, स्त्री वेद है, क्या नपुंसक वेद है। तो विदाउट एनी डिफरेंसिएशन जो मैथुन की जो जो वांछा उत्पन्न होती है उसको मैथुन संज्ञा कह दिया। वहाँ वेदों का उदय है, परंतु वेद इन जनरल सामान्य कौन सा विशिष्ट वेद है उसकी चर्चा नहीं करेंगे, इसलिए उसको मैथुन संज्ञा कहेंगे। और जो वेद वाला जो कॉलम है प्ररूपणा है उसमें हम कौन सी बात करेंगे, वो पुरुष वेद है, स्त्री वेद है या नपुंसक वेद है, इसलिए ये दो प्ररूपणा है वो अलग अलग बताई गई है, इसलिए दोनों में एकत्व नहीं बनता। अब हम पृष्ठ 416 पर आ गए। परिग्रह संज्ञा भी लोभ कषाय के साथ एकत्व को प्राप्त नहीं होती। यानी संज्ञा में हमने चार बातें देखी थी, आहार, भय, मैथुन और परिग्रह। तो मैथुन और वेदों का डिफरेंस उन्होंने बता दिया। अब कहते जो परिग्रह आपने संज्ञा के नीचे लिखा तो लोभ का टाइप है वो, तो लोभ कषाय यानी कषाय मार्गणा में वो लिख दो, ये अलग से संज्ञा में बताने की क्या जरूरत है। तो उसको कहते हैं वे दोनों एक नहीं है, क्योंकि बाह्य पदार्थों को विषय करने वाला होने के कारण परिग्रह संज्ञा व्यपदेश को धारण करने वाले लोभ से, क्या कहते हैं, जो लोभ जिसका नाम परिग्रह संज्ञा है, ऐसा जो लोभ है वह लोभ कषाय के उदय रूप सामान्य लोभ का भेद है। यानी लोभ कषाय जनरल है और जो परिग्रह संज्ञा वाला जो लोभ है वो कोई विशेष लोभ है, इसलिए दोनों में भेद है, अंतर है, डिफरेंस है। अर्थात बाह्य पदार्थों के निमित्त से जो लोभ होता है उसे परिग्रह संज्ञा कहते हैं। यानी उन विषयों को, उन पदार्थों को प्राप्त करने की इच्छा होती है ना, वो परिग्रह संज्ञा, बाह्य पदार्थों के निमित्त से जो लोभ होता है वो परिग्रह संज्ञा, और सामान्य लोभ कषाय के उदय से उत्पन्न हुए परिणामों को लोभ कहते हैं। ये दोनों में, दोनों है तो लोभ ही, परंतु उसमें जो एक विशेष भेद है उसको परिग्रह संज्ञा कहा, और जो लोभ इन जनरल है उसको लोभ कषाय कहा। फिर शंका, यदि ये चारों ही संज्ञाएं बाह्य पदार्थों के संसर्ग से उत्पन्न होती है तो अप्रमत्त गुणस्थानवर्ती जीवों के संज्ञाओं का अभाव हो जाना चाहिए। क्या कहना चाहते हैं, अब ये परिग्रह संज्ञा भी बताई बाह्य पदार्थों के निमित्त से उत्पन्न होते हैं, लोभ उत्पन्न होता है, तो कहते अप्रमत्त गुणस्थान के ऊपर तो ध्यान की अवस्था है, बाह्य पदार्थों के लक्ष्य से कुछ उत्पन्न ही नहीं होता है, तो वहां कैसे आप संज्ञा है ऐसा कहते हो। उसका समाधान, नहीं, क्योंकि अप्रमत्तों में उपचार से उन संज्ञाओं का सद्भाव स्वीकार किया गया है। यानी अप्रमत्त आदि जो गुणस्थान है सातवां आठवां वगैरह, तो यहाँ क्या उपचार से ने वहां कर्मों का उदय पाया जाता है, जो केवली भगवान के ज्ञान में आया है ना, उन्होंने देखे कि इतने सारे जो अप्रमत्त वाले हैं, अपूर्वकरण वाले हैं, निवृत्तिकरण वाले हैं, उनमें कौन से कर्मों का उदय है, तो उसकी अपेक्षा उन्होंने वहां उस संज्ञा का या उस कषाय का ऐसा वर्णन किया है। या तो संज्ञा की बात चल रही, अब उपयोग कहेंगे। देखो अभी हमने क्या देखा, प्राण देखे, हाँ संज्ञा, और अभी उपयोग देखेंगे, क्योंकि बाकी प्ररूपणा पहले हमने देखी थी। अब जो उपयोग वाली जो प्ररूपणा है, तो उपयोग किसको कहना, स्व और पर को ग्रहण करने वाले, जो को ग्रहण करना है ने जानना, ग्रहण करना है ने लेना, ऐसा नहीं है। जब जब शास्त्र में ग्रहण करने की बात आती है, अभी आत्मा काहे से ग्रहण करेगा, हाथ पैर से तो आत्मा तो ज्ञान से ग्रहण करेगा, ग्रहण करना में उसी का अर्थ होता है जानना, तो इसके अर्थ में ग्रहण करना, अवलोकन करना, प्रतिभास होना, परिच्छित्य होना आदि अलग अलग शब्द आते हैं, तो सबका अर्थ ज्ञान होना। तो स्व और पर को ग्रहण करने वाले परिणाम विशेष को उपयोग कहते हैं। उपयोग ने एक्चुअली वहां जो ज्ञान का कार्य चल रहा है ना, उसको उपयोग लिया, व्यापार शब्द आता है उसके लिए, कहा भी है, अभी हम ऊपर गाथा पढ़ेंगे 228 नंबर की। वत्थु निमित्तं भावो जादो जीवस्य जो दुवजोगो सोदु विहोणायो सायारोचे वर्णायरो। वस्तु को ग्रहण करने के लिए जीव का जो भाव होता है उसे उपयोग कहते हैं। उसके दो भेद है, साकार उपयोग और निराकार उपयोग। साकार उपयोग यानी ज्ञान, यानी ज्ञानोपयोग, और निराकार उपयोग यानी दर्शनोपयोग। उसको निराकार क्यों कहा? आकार यानी भेद पूर्वक जानना, विशेषताओं को जानना, उसको आकार कहते हैं, इसलिए ज्ञान को साकार कहते हैं। और दर्शन क्या करता है? सामान्य से ग्रहण करता है विदाउट एनी डिफरेंशिएशन, इसलिए उसको कहते हैं निराकार। आकार यानी शेप, ऐसा उसका अर्थ नहीं है, ख्याल है ना? ज्ञान को साकार कहेंगे और दर्शन को निराकार कहेंगे। अब अगली गाथा। मदिसुद ओहि मणे हिय सग सग विषय विशेष विन्नाणम अंतो मुहूर्त कालम उवजोगो सोदुसायारो। अब ये जो साकार उपयोग की बात करते हैं, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनःपर्य ज्ञान के द्वारा अंतर्मुहूर्त काल पर्यंत, इसके लिए लिमिट बताए। मति, श्रुत, अवधि, मनःपर्य के लिए अंतर्मुहूर्त काल पर्यंत अपने अपने विषय का जो विशेष ज्ञान होता है उसे साकार उपयोग कहते हैं। ये जो क्षोभम ज्ञान है, अंतर्मुहूर्त तक एक पदार्थ को जानते रहने से उसको वो ज्ञान होगा। केवल ज्ञान तो एक समय में जानता है ना? ये वहाँ लिमिट पड़ गई, तो इसलिए वह अंतर्मुहूर्त काल पर्यंत अपने अपने विषय का जो विशेष ज्ञान होता है उसको साकार उपयोग कहते हैं, ये बात आ गई। अब 200 हाँ, देखो देखो, अपने अपना विषय का अर्थ इसको फिर हम देखते हैं। देखो, मति ज्ञान का अपना विषय का जो ज्ञान है, अभी मति ज्ञान कितने प्रकार के? तो पांच इंद्रिय और मन के द्वारा मति ज्ञान होता है। तो पांच इंद्रिय हम समझते हैं, चक्षु इंद्रिय। तो चक्षु इंद्रिय का अपना विषय कौन सा है देखना। तो चक्षु इंद्रिय सुगंध दुर्गंध को जानेगा कि नहीं जानेगा? नहीं जानेगा। हाँ, वो तो हल्का भारी है, जानेगा कि नहीं जानेगा? नहीं। तो वो उसका विषय नहीं हो सकता। तो चक्षु इंद्रिय का विषय क्या हो सकता है? तो रूप यानी वर्ण, है ना? ये पदार्थ का साइज, शेप, ऐसे नहीं, जो उसका वो तो रूप थी तो हम देखते हैं, तो रूप उसका विषय है। अब कर्णेन्द्रिय का विषय क्या है? आवाज, ध्वनि, वो उसका विषय। घ्राणेन्द्रिय का विषय क्या है? गंध, सुगंध हो या दुगंध, ये उसका अपना अपना विषय है। तो हर एक को अपने अपने विषय को, अवधि ज्ञान किसको जानेगा? आत्मा को जानेगा, अपने विषय को जानेगा। उसका विषय क्या है? रूपी पदार्थ है। मनःपर्य का विषय क्या है? दूसरे के मन में स्थित रूपी पदार्थ, इसको कहते हैं अपना अपना विषय, ख्याल है? तो क्या कहते हैं? ये चार जो ज्ञान है, अंतर्मुहूर्त काल पर्यंत अपने अपने विषय का जो विशेष ज्ञान होता है, कोई भी ज्ञान दूसरे का विषय का, ये मति ज्ञान का विषय है, शुद्ध ज्ञान का विषय है, वो अवधि ज्ञान वाला वो नहीं जाने, इस तरह से अपना विषय जानते हैं। अब अगली गाथा 230 नंबर की। इंद्रिय मनोहिणावा अथे अविशेषी दूण जम गहणम अंतो मुहूर्त कालम उवजोगो सो अनायारो। अब अनाकार यानी निराकार उपयोग की बात करें, पहले साकार की बात कर दी, अब निराकार की बात है। इंद्रिय, मन और अवधि के द्वारा अंतर्मुहूर्त काल पर्यंत पदार्थों की विशेषता किए बिना, पहले विशेषताओं सहित अपने अपने विशेष विषय का विशेष ज्ञान होता है, लिखा था साकार में। अब यहाँ क्या लिखते हैं? विशेषता किए बिना, यानी डिफरेंस किए बिना, उसको कहते हैं सामान्य। यानी ये पुस्तक है कि पेन है कि पेंसिल है, डिफरेंस किए बिना बस वह पदार्थ है ऐसा ग्रहण करना, तो क्या कहते हैं? इंद्रिय, मन और अवधि के द्वारा अंतर्मुहूर्त काल पर्यंत पदार्थों की विशेषता किए बिना जो ग्रहण होता है उसे निराकार उपयोग कहते हैं। उसमें आता ना, ये तीन ही क्यों लिए? इंद्रिय, मन और अवधि। अवधि के द्वारा जो होता है वो क्या है? अवधि दर्शन होगा। इंद्रियों में चक्षु के द्वारा वो चक्षु दर्शन, और अन्य इंद्रिय और मन के द्वारा अचक्षु दर्शन। चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन। अभी केवल ज्ञान और केवल दर्शन की बात अलग रखी उन्होंने, पहले तो क्षोभम ज्ञान और दर्शनों की बात कर दी, अब केवलियों के बात वो, क्योंकि दोनों को, उनको तो उपयोग, दोनों ही उपयोग जो है केवलियों के युगपत होते हैं। सोपम अवस्था में पहले दर्शन उपयोग होता है और पश्चात ज्ञान उपयोग होता है, और केवली भगवान को दोनों एक साथ होते हैं, वो बात अब कहेंगे। 231वीं गाथा में सागर मणाकारम केवलिनम युगवदेव वहोगे सादि अनंत कालो पच्चखो सौभाव गदो। केवलियों का साकार और अनाकार उपयोग एक साथ होता है, वह सादि होकर भी अनंत काल तक रहने वाला होता है। अब ये तो अंतर्मूर्त काल पर्यंत लिखा था ऊपर के जो अभी हमने ज्ञान देखे थे, और ये वो सादि से ले, सादि तो है अनादि काल से केवल ज्ञान नहीं था, एट पर्टिकुलर पोजीशन केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ है, और उसके पश्चात वो अनंत काल तक केवल ज्ञान केवल ज्ञान केवल ज्ञान हर समय की पर्याय केवल ज्ञान की अलग अलग है, परंतु अनंत काल तक वो प्रवाह रूप से चलेगा, इसलिए लिखते सादि होकर भी अनंत काल तक रहने वाला है। और कैसा है वह? प्रत्यक्ष सब पदार्थों को ग्रहण करने वाला होता है, उसके लिए कोई इंद्रिया की लाइट की प्रकाश की ऐसी कोई जरूरत नहीं है, अन्य कोई निमित्तों की आवश्यकता नहीं है। आत्म प्रदेशों संपूर्ण सभी असंख्यात आत्म प्रदेशों के द्वारा वो सभी पदार्थों को जानते हैं। जैसे क्षोभम ज्ञानी कैसा अपने अपने विषय को जानता था, मति ज्ञान अपने विषय को जानेगा, मति ज्ञान में भी पांच इंद्रिया है तो वो अपने अपने विषय को जानेंगे, और केवल ज्ञान सभी विषयों को एक साथ जानेगा। यानी जो आवाज का ज्ञान है, गंध का ज्ञान है, रूप का ज्ञान है, वो सब किसके द्वारा? उनके आंखों की जरूरत नहीं, आत्म प्रदेशों से साक्षात वो सब देखना जाने सुनना, ये जो को हम अलग अलग इंद्रियों के द्वारा जो कार्य होता है उनका सब आत्म प्रदेशों के द्वारा प्रत्यक्ष हो जाता है, और वो एक समय सामने वाली नहीं बात, अनादि से अनंत काल तक की सभी सभी पर्याय एक साथ, उनका क्रम भी उनके ख्याल में आता है और उनका एक साथ भी जानते। यानी ऐसा है ना कि ये अभी हो रहा है बाद में ये होगा, होगा वाले नहीं बात उनमें, भविष्य काल की भी बात वो वर्तमानवत जानते हैं, जैसे सामने है साक्षात ऐसा जानते हैं। तो ये केवल ज्ञान की बात हो गई। अब ये जो उपयोग प्ररूपणा है वो ज्ञान मार्गणा अलग बात है, दर्शन मार्गणा अलग बात है, और ये उपयोग की प्ररूपणा अलग बताई है। तो या फिर शंकाकार पूछेगा उसमें क्यों नहीं डाला, इसलिए आचार्य स्वयं बता रहे हैं। क्या कहते हैं? वह उपयोग ज्ञान मार्गणा और दर्शन मार्गणा में अंतर्भूत नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि ज्ञान और दर्शन इन दोनों के कारण रूप ज्ञानावरण और दर्शनावरण के क्षोभम को उपयोग मानने में विरोध आता है। ज्ञान मार्गणा में और दर्शन मार्गणा में कितना क्षोभम है, जानने की कितनी कैपेसिटी है, क्षोभम यानी एक्चुअल पर्याय में कितना है, तो उसको वहाँ ज्ञान और दर्शन में लिया। जैसे हम कहते कि इसको कितना ज्ञान है, तो वहाँ कहेंगे कि मति श्रुता उदी मन परे चार ज्ञान के धारी है, परंतु उपयोग में कितना होगा एट ए टाइम, या तो ज्ञान उपयोग होगा या दर्शन उपयोग होगा, तो वहाँ साकार या अनाकार ऐसा कहेंगे। तो उपयोग अलग बात है और ये ज्ञानावरण दर्शनावरण का क्षोभम ये बात अलग है। फिर शंका, यह 20 प्रकार की प्ररूपणा रही आओ, किंतु यह बतलाइए कि यह प्ररूपणा सूत्रानुसार कही गई है या नहीं। देखो क्या कहते हैं, पहले भाग में अभी जो हमने जितने सारे सूत्र देखे, सूत्र यानी मूल आगम से जो बात चली आ रही है उसको सूत्र कहा। भगवान महावीर के द्वारा जो उपदेश दिया था, गणधरों ने जिसकी रचना की थी द्वादशांकी, अब वो आचार्यों की परंपरा से वे ही सूत्र आगे 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 आचार्यों ने एक दूसरे को सुनाए, उन्होंने याद रखे, अगले उनके शिष्यों को सुनाए। तो ये मूल सूत्रों से ये बात है कि नहीं है, ऐसे शंकाकार शंका पूछता है। तो फिर प्रतिशंका क्या? हाँ, उनका ऐसा कहना है शंकाकार का, आपने 20 प्ररूपणा बताई अलग अलग, भले वो हम मान लेते, परंतु क्या ये मूल सूत्र के अनुसार है क्या नहीं है, क्या आपने मन से कल्पना से किसी ने बताई है, तो उसका आचार्य उत्तर देने के बदले प्रश्न ही पूछते फिर से। इस प्रश्न से क्या प्रयोजन है? शंका, यदि सूत्रानुसार नहीं कही गई है तो यह प्ररूपणा नहीं हो सकती, यानी यदि वो मूल भगवान के उपदेश के अनुसार नहीं है तो इसको हम प्ररूपणा मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि यह सूत्र में नहीं कहे गए विषय का प्रतिपादन करती है। और यदि सूत्रानुसार कही गई है तो जीव समास, प्राण, पर्याप्ति, उपयोग और संज्ञा प्ररूपणा का मार्गणाओं में जिस प्रकार अंतर्भाव होता है उस प्रकार कथन करना चाहिए। इसका प्रश्न में ऐसा अर्थ उसके प्रश्न का है कि आपने 20 प्ररूपणाएं बताई और पहले सूत्र में तो 14 मार्गणाएं बताई थी, तो ये 20 प्ररूपणा आपने निकाली है तो सूत्र में से निकाली कि अलग ही कुछ है? यदि सूत्र में से निकाली है तो फिर ये जो बातें बताई है तो वो मार्गणा में ही आपको बताना चाहिए था, उसका अलग ये 6 बातें और अलग कहाँ से निकाली? मार्गणा तो 14 थी और ये प्ररूपणा तो 20 हो गई, तो यह सूत्र के जैसा है कि अलग है? और यदि अलग नहीं है तो वो मार्गणा में इसको इंक्लूड होना चाहिए था, उसका भी समाधान करते हैं। दूसरे पक्ष में दिया गया दूषण तो यहाँ पर आता नहीं है क्योंकि वैसा स्वीकार नहीं किया है, तथा प्रथम पक्ष में जो जीव समास आदि के 14 मार्गणाओं में अंतर्भाव करने की बात कही है उसे कहते हैं। यानी उसने बोला था कि जीव समास, प्राण वगैरह ये जो है वो 14 मार्गणाओं में होना चाहिए, तो उस अपेक्षा से ये बता कि इनको अगर मार्गणा में ही हम इंक्लूड करना चाहते तो कौन कौन से मार्गणा में वो इंक्लूड हो गए उसकी बात करेंगे। पर्याप्ति और जीव समास प्ररूपणा काय और इंद्रिय मार्गणा में अंतर्भूत हो जाती है। पर्याप्ति में हमने देखा ना आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति आदि, और जीव समास में वो एक इंद्रिय के बादर सूक्ष्म वगैरह भेद देखे थे, द्विंद्रिय तीन्द्रिय आदि, यानी सब 14 जीव समास, तो वो किस में आते हैं? काय मार्गणा में। काय मार्गणा यानी 5 स्थावर और षट वो त्रस्काय, वो काय मार्गणा हुई। और इंद्रिय मार्गणा यानी एक इंद्रिय जीव, दो इंद्रिय जीव, तीन्द्रिय जीव, उनमें तो वो जीव समास उसमें से हम अलग से बता सकते हैं, तो उसमें वो इंक्लूड हो जाते हैं, उसमें वो अंतर्भाव हो जाता है। अंतर्भाव ने उसमें देर इंक्लूडेड, क्योंकि एकेंद्रिय, द्विंद्रिय, तीन्द्रिय, चतुरिंद्रिय, पंचेंद्रिय, सूक्ष्म, बादर, पर्याप्त और अपर्याप्त रूप भेदों का उक्त दोनों मार्गणाओं में प्रतिपादन किया गया है। यानी उन दोनों मार्गणाओं में इसी का कथन आता है सब। अब अगली बात बता रहे, उच्छ्वास, निश्वास, वचन बल और मनोबल, इन तीन प्राणों का भी उक्त दोनों मार्गणाओं में ही अंतर्भाव होता है, क्योंकि ये तीनों प्राण पर्याप्तियों के कार्य है। क्या कहना चाहते हैं? अभी जो उक्त दो मार्गणा है ने कौन से? काय मार्गणा और इंद्रिय मार्गणा, उसमें हमने पर्याप्त अपर्याप्त भेद देखे थे, और उसमें भी वो प्राण किसको कितने हो गए वो बात उसमें आ जाएगी, जैसे एक इंद्रियों को इतने प्राण होते हैं, दो इंद्रियों को इतने होते हैं, ऐसी, तो वो उसमें उसके अंदर उसका भी कथन हो सकता है। काय बल प्राण योग मार्गणा से निकला है, क्योंकि योग का लक्षण बल है। ये जो काय बल प्राण है वो योग मार्गणा में से निकला। योग मार्गणा से हम देखते हैं मनो योग, वचन योग, काय योग। हाँ, अब आयु प्राण गति मार्गणा में अंतर्भूत है। आयु प्राण हमने अलग गिनाया, प्राण वाला पूरा जो चैप्टर है वो हमें अलग अलग मार्गणाओं में विभाजित करना है, तो आयु प्राण कहाँ लिखना? तो गति मार्गणा में, जो नर गति वाला है तो नरकायु है उसकी, इस तरह से। क्योंकि आयु और गति ये दोनों परस्पर अविनाभावी है। अविनाभावी है ना, ऐसा कभी नहीं होगा कि मनुष्य गति का उदय चल रहा है और कोई अन्य ही तिर्यंच आयु का उदय, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जो गति और जो आयु है वो सिमिलर वाली है, दोनों का अविनाभाव है, जहाँ एक है वहाँ दूसरी होती ही है। अर्थात विवक्षित गति के उदय होने पर तज्जातीय यानी उसी जाति के आयु का उदय होता है। विवक्षित गति ने हमारी बात करेंगे, हमारे मनुष्य गति का उदय है तो उसी जाति के यानी मनुष्य आयु का ही हमारे उदय चल रहा है, बराबर है ना। जो नारकी जीव है उसके नरक गति नाम कर्म का उदय है और नरकायु का उसका उदय चल रहा है, यानी उसी वही गति और वही आयु उनका उदय एक साथ होगा। और विवक्षित आयु के उदय होने पर तजातीय गति का उदय होता है, ये आयु और गति सिमिलर होती है जिनका उदय चल रहा है। अब इंद्रिय प्राण ज्ञान मार्गणा में अंतर्लीन हो जाते हैं, क्योंकि भावेंद्रिया ज्ञानावरण के क्षोभ समरूप होती है। जैसे हम पांच इंद्रिय प्राण कहेंगे तो ज्ञानावरण का विशिष्ट क्षोभ सम होगा पंचेंद्रियों जितना, तो वो पांच इंद्रिय प्राण होगी, तो वो ज्ञान में ज्ञानावरण के उसमें ज्ञान मार्गणा में उसका अंतर्भाव हो जाएगा। अब आहार संज्ञा की बात करें, आहार के विषय में जो तृष्णा या आकांक्षा होती है उसे आहार संज्ञा कहते हैं, और वह रति स्वरूप होने, रति यानी उसके प्रति मोह आकर्षण है ना, कुछ पाने की इच्छा है, ग्रहण करने की इच्छा है, आहार ग्रहण करने की इच्छा है, यानी उसको रति परिणाम कहते हैं। रति यानी उसके प्रति आसक्ति, हाँ परिणाम। तो ये रति स्वरूप होने से मोह की पर्याय है, ये रति अरति आदि कषाय है ना उसमें। रति भी राग रूप होने के कारण माया और लोभ में अंतर्भूत होती है। देखो देखो, अभी हम क्या है, एक कषाय कहने से एक शब्द में हम कह सकते हैं, अगर दो शब्दों में कहना है तो हाँ राग और द्वेष, हाँ बराबर। अब चार में कहना है तो बहुत अच्छा, क्रोध मान माया लोभ। अभी क्रोध और मान है वो राग है कि द्वेष है, द्वेष, और माया और लोभ वो राग है। अब ये जो नौ कषाय है, हास्य रति अरति वगैरह, तो उसमें से हास्य रति और तीन वेद, हास्य रति और तीन वेद ये राग में चले जाएंगे, और जो शोक अरति, शोक अरति भय और जुगुप्सा ये द्वेष में चले जाएंगे। तो यहाँ क्या कहते हैं, इसलिए ये जो रति है वो राग रूप होने के कारण माया और लोभ में अंतर्भूत होती है, राग में होती है ना, इसलिए माया और लोभ में कहा, राग में। इसलिए कषाय मार्गणा में आहार संज्ञा समझना चाहिए। भय संज्ञा भय स्वरूप है, भय भी नौ कषाय है, और वह भय द्वेष रूप होने के कारण, अभी हमने देखा ना वो द्वेष में चला जाता है भय, क्रोध और मान में अंतर्भूत है, इसलिए भय संज्ञा भी कषाय मार्गणा से उत्पन्न हुई है। अब मैथुन संज्ञा वेद मार्गणा से उत्पन्न हुई है, क्योंकि वह मैथुन संज्ञा स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुसक वेद के तीव्र उदय रूप है। ये जो कर्म जो है, स्त्री वेद नाम का कर्म है, पुरुष वेद नाम का कर्म है, नपुसक वेद नाम का कर्म है, उसका तीव्र वेद होता है, तब वहां वो मैथुन संज्ञा ने उसकी इच्छा जो उत्पन्न होती है, तो ये वेदों वेद नाम का जो कर्म है उसके तीव्र उदय से होती है, उसकी उदीर्णा कहो तीव्र उदय कहो उसके कारण होती है। रेगुलर सामान्य उदय तो चलता रहता है, परंतु ये मैथुन संज्ञा जब तीव्र उदय होगा तब उसकी वो विशिष्ट भाव उसके उत्पन्न होते हैं, इसलिए वो उसमें इंक्लूडेड, किसमें, वेद मार्गणा में। परिग्रह संज्ञा भी कषाय मार्गणा से उत्पन्न हुई है, क्योंकि यह संज्ञा बाह्य पदार्थों में व्याप्त लोभ रूप है, यानी जो लोभ बाह्य पदार्थों में व्याप्त है, बाह्य पदार्थों के कारण वहां जो उत्पन्न हुआ है उसको हमने परिग्रह संज्ञा कहा, यानी वो लोभ कषाय है और वो कषाय मार्गणा में अंतर्भूत हो जाती है। यानी ये जो अन्य अन्य बातें जो है, मैंने 20 प्ररूपणा में 14 मार्गणा छोड़कर ये जो 6 अन्य बातें आई है वो मार्गणा में किस तरह से इंक्लूड होती है इसका यहाँ वर्णन चल रहा है, क्योंकि शंकाकार की शंका है कि आपने ये नया कहाँ से लाया, क्या मूल सूत्र में है क्या नहीं है, तो उसका ये जवाब है। अब साकार उपयोग ज्ञान मार्गणा में और अनाकार उपयोग दर्शन मार्गणा में अंतर्भूत होते हैं, क्योंकि वे दोनों ज्ञान और दर्शन रूप ही है। ऐसा होते हुए भी उक्त प्ररूपणाओं के स्वतंत्र कथन करने में पुनरुक्ति दोष भी नहीं आता। पुनरुक्ति यानी बार बार दोबारा बताना, मार्गणा में तो है इंक्लूडेड है तो दोबारा अलग से क्यों बताया, तो उसमें कोई दोष नहीं है। पुनरुक्ति यानी पुनः उसका उक्ति करना, यानी पुनः कथन, रिपीट करना, ये कोई रिपीटेशन दोष नहीं इसमें कहते हैं। क्यों नहीं है? क्योंकि मार्गणाओं से उक्त प्ररूपणाएं कथनचित भिन्न है, यानी उसमें कुछ विशेषताएं है ना, जैसे परिरह संज्ञा लोभ में तो आती है परंतु उसमें कुछ विशेषता है, आहार संज्ञा में कुछ विशेषता है, तो इसलिए मार्गणा में तो उसका भले वो इंक्लूड हो जाए परंतु उसकी विशेषता है, इसलिए इस प्ररूपणा का अलग कथन किया जाता है। इसलिए इस 20 प्ररूपणाओं के द्वारा कोई भी जो बात अभी हम देखेंगे अलग अलग, तो उसके ये 20 प्ररूपणाओं में कथन करेंगे। शंका, देखो कथनचित भिन्न ने किसी अपेक्षा से भिन्न, अभी जो हमने इतनी बार चर्चा की थी, जैसे उपयोग है और साकार उपयोग है अनाकार उपयोग है, तो वो तो ज्ञान और दर्शन में इंक्लूड था ही, फिर भी वहाँ डेफिनेट कुछ, वो ज्ञानोपयोग है कि दर्शन उपयोग है, वो युगोपथ है कि अलग अलग है, उसकी चर्चा करने के लिए वहाँ उसको अलग नाम बता दिया। तो कथनचित भिन्न है, जैसे हम कहते ना द्रव्य और पर्याय भेद है कि अभेद है, तो कथनचित भेद है कथनचित अभेद है, किसी अपेक्षा उसको कहते हैं कथनचित। तो यहाँ किसी अपेक्षा से उसमें भिन्नता है, इसलिए यहाँ अकेले 14 मार्गणा नहीं बताकर 20 प्ररूपणाओं से कथन होगा। हाँ, देखो ये प्ररूपणाएं अभी हमने जो देखी कौन कौन से, गुणस्थान, जीव समास, पर्याप्ति, प्राण, संज्ञा, फिर ये 14 मार्गणा क्रम से, कौन सी 14, गति, इंद्रिय, काय, योग, वेद, कषाय, ज्ञान, संयम, दर्शन, फिर लेशा, भव्य, सम्यक्त्व, संगी और आहार, और अंतिम प्ररूपणा उपयोग वाली। ये जो 20 प्ररूपणा है क्रम से, हम अभी पहले गुणस्थान में कौन कौन सी प्ररूपणा होती है वो सब कहेंगे, दूसरे गुणस्थानों में सब कहेंगे, अब जब हम कहेंगे वो नरक गति पर लगाओ 20 प्ररूपणा, तो नारकियों में हम 20 के 20 लगाएंगे, क्रम से हम देखेंगे तो ख्याल में आ जाएगा आपके। तो शंकाकार पूछ ही रहा है कि ये प्ररूपणा करने से क्या प्रयोजन है, तो उसका समाधान, सूत्र के द्वारा सूचित पदार्थों के स्पष्टीकरण करने के लिए 20 प्रकार से प्ररूपणा कही जाती है। ख्याल है ना, ये प्ररूपणा क्यों बतानी, क्योंकि ये प्ररूपणा हमारे ख्याल में आ जाए तो प्रत्येक गति में कैसी कैसी बातें, वहाँ कितने गुणस्थान हो सकते हैं, उसमें कौन कौन से वेद कौन से हो सकता है वहाँ, अरे सम्यक दृष्टि कहाँ कहाँ उत्पन्न हो सकता है, विग्रह गति में कौन से गुणस्थान होते, इतनी बातें सभी एंगल से हम सोचते हैं तो बिल्कुल क्लियर पिक्चर अपने आंखों के सामने आ जाता है सभी गतियों का, या सभी एकेंद्रियों से लेकर पंचेंद्रियों तक का, या अलग अलग जो है इसमें सम्यक्त्व के प्रकारों का, ये सब हमें ख्याल आ जाता है। अब यहाँ जो 20 प्ररूपणा है, तो सामान्य से सभी की पहले चर्चा, यानी कितने गुणस्थान हो सकते हैं, तो 14 हो सकते हैं, और कोई गुणस्थान के पार ऐसे सिद्ध भी है, तो यहाँ गुणस्थान 14 है और गुणस्थानातीत भी है, उसको कहेंगे अतीत गुणस्थान भी जीव है, ये जीव समास कितने होते हैं, तो 14 होते हैं, और कोई इन 14 जीव समासों से पार ऐसे सिद्ध भगवान होते हैं, तो इन सब की अब ये पहले इन टोटल कितने हैं, हर एक प्ररूपणा में जैसे संज्ञा कितनी है, 4 होती है, तो कोई बिना संज्ञा वाला भी जीव होगा तो हाँ, तो 11वां गुणस्थान, 12वां गुणस्थान, उनके संज्ञा नहीं होती है तो उनको क्षीण संज्ञा कहेंगे, ऐसे हर एक में कितने कितने हैं उसके ब्रॉड एकदम जनरल अभी यहाँ कथन करेंगे, फिर अलग अलग अपेक्षाओं से हम डीपर स्टडी करेंगे क्रम से। ये तो बिल्कुल मैक्सिमम नंबर कितनी है कषायों की, संज्ञाओं की, जीव समासों की, वो सब टोटल यहाँ गिनाई है, तो अभी हम इसको पढ़ेंगे। क्या कहते हैं, सामान्य से अब पहले 14 गुणस्थान बता रहे, तो 14 के नाम लेंगे, ये नाम लेकर समझाया है। अब ये जो राइट साइड में जो आपको 419 पेज पर जो टेबल दिख रहा है, देखो इसमें वो यानी गुणस्थान, जी यानी जीव समास, पो यानी पर्याप्ति, ये कंटिन्यूस जो अभी हमने 20 प्ररूपणाएं देखी है वो 20 के 20 कॉलम किए हैं, बराबर। अब जो गुणस्थान का कॉलम है उसमें उनकी संख्या लिखी है, अभी हमारे सामान्य से यानी हम सभी गुणस्थान और सभी जीव समास सभी गिन रहे हैं, तो सभी की चर्चा है तो यहाँ सब बता रहे हैं। तो हम पहले वो 14 गुणस्थान बता रहे हैं, उसके नाम हम पढ़ेंगे। देखो सामान्य से, यहाँ पर 418 पेज पर हम है, नीचे की लाइन, सामान्य से मिथ्या दृष्टि, सासाधन सम्यक दृष्टि, सम्यक मिथ्या दृष्टि, असंयत सम्यक दृष्टि, संयता संयत, प्रमत्त संयत, अप्रमत्त संयत, अपूर्व करण प्रविष्ट शुद्धि संयतों में उपशमक और क्षपक, दो दो लिए ना, उपशम श्रेणी वाले भी और क्षपक श्रेणी वाले भी, अनिवृत्तिकरण प्रविष्ट शुद्धि संयतों में उपशमक और क्षपक, सूक्ष्म सांप्राय प्रविष्ट शुद्धि संयतों में उपशमक और क्षपक, उपशांत कषाय वीतराग छद्मस्थ, ये कौन हो गए, उपशमक हो गए कि क्षपक हो गए? हाँ, तो उपशमक है कि क्षपक है? उपशमक। हाँ, क्षीण कषाय वीतराग छद्मस्थ, संयोग केवली अयोग केवली और सिद्ध जीव होते हैं। ये पहला हमारा सूत्र आया था पहले भाग में, पहले इस ओग सूत्र की प्ररूपणा कहते हैं, यानी इतने 14 गुणस्थान होते हैं ऐसे सूत्र आया था। तो ये गुणस्थान में हमने 14 गुणस्थान के नाम लिख दिए, वो नीचे के कॉलम में। सिद्ध जीव होते हैं तो उनमें वो अतीत गुणस्थान लिखा, सिद्धों के लिए कोई गुणस्थान नहीं है, वो गुणस्थान से पार है, वही इस प्रकार है। तभी वो कॉलम में क्या हमें लिखना है, तो 14 गुणस्थान है और 14 गुणस्थानों से अतीत गुणस्थान भी है, अतीत यानी पार किया है, गुणस्थानों से जो पार हुए हैं वे अतीत गुणस्थान। अब 14 नेक्स्ट कॉलम जो है सेकंड कॉलम, 14 जीव समास है। अब शंकाकार पूछता है वे 14 जीव समास कौन से हैं, जो कि हमने पहले देखे थे, फिर भी दोबारा यहाँ वो भूल गए ना, इसलिए फिर पूछ रहे हैं। तो एकेंद्रिय जीव दो प्रकार के हैं, बादर और सूक्ष्म। बादर जीव दो प्रकार के हैं, पर्याप्त और अपर्याप्त। हम क्या कहते हैं, हम सबको गिनते फिर पर्याप्त अपर्याप्त डायरेक्ट बताते हैं, अब हर एक में ये पर्याप्त अपर्याप्त लगाएंगे। सूक्ष्म जीव दो प्रकार के हैं, पर्याप्त और अपर्याप्त। द्विंद्रिय जीव दो प्रकार के हैं, पर्याप्त और अपर्याप्त। तीनिंद्रिय जीव दो प्रकार के हैं, पर्याप्त और अपर्याप्त। चतुरिंद्रिय जीव दो प्रकार के हैं, पर्याप्त और अपर्याप्त। पंचेंद्रिय जीव दो प्रकार के हैं, संगी और असंगी। पहले ये मेन डिफरेंस किया और फिर हर एक में पर्याप्त अपर्याप्त कहेंगे। संगी जीव दो प्रकार के हैं, पर्याप्त और अपर्याप्त। असंगी जीव दो प्रकार के हैं, पर्याप्त और अपर्याप्त। इस प्रकार ये 14 जीव समास होते हैं और 14 के अलावा भी है तो हमने सिद्धों को भी इंक्लूड किया है, तो अतीत जीव समास भी जीव होते हैं तो कहा भी है। तो ये सेकंड कॉलम में देखो, जीव समास के नीचे 14 लिखा और अतीत जीव समास लिख दिया। अब ये जो 232 नंबर की गाथा है उसको हम पढ़ेंगे। जय हिम अणेया जीवा नज्जन्ते बहुविहावितज्जादि ते पुनसंग हि दत्था जीव समासातिविण्णेया। नीचे उसका अर्थ देखते हैं, जिनके द्वारा अनेक जीव तथा उनकी अनेक प्रकार की जातियां जानी जाती हैं। अभी हमने देखे ना, अनेक जीव जाने हमने एकेंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक। अनेक अर्थों के संग्रह करने वाले उन धर्मों को जीव समास कहते हैं, ऐसा जानना चाहिए। यानी हम जीवों को अलग अलग ग्रुप्स में विभाजित करते हैं, ये एकेंद्रीय जाति है, ये द्विंद्रीय जाति है, तीनिंद्रीय जाति है, एकेंद्रीय में भी ये सूक्ष्म है, ये बादर है, उनका कोई विशिष्ट कॉमन ऐसा धर्म है जो है ना, उनकी कोई विशेष है तो उसके कारण हम उस ग्रुप में उनको डालेंगे। जो पंचेंद्रिय जीव है उनको उनके पंचेंद्रिय के ग्रुप में रखेंगे, तो उनके ऐसे विभाजन हम कर सकते हैं। तो उस संग्रह करने वाले धर्म, संग्रह करने वाला धर्म यानी उनकी जो कोई विशेषताएं है, जैसे एकेंद्रियों में कौन सा धर्म है, तो एक इंद्रिय जितना ज्ञान है शरीर में वो एक स्पर्शन इंद्रिय भी पाया जाता है, उनके ज्ञान का उघाड़ इतना ही है, उन सबको हम तावर नाम का कर्म का उदय है, एक इंद्रिय जाति नाम कर्म का उदय है, ये उनका एक कॉमन धर्म हुआ। तो उस कॉमन यानी सामान्य धर्म के द्वारा उन सब जीवों को हमने इकट्ठा किया, इकट्ठा किया यानी एक जगह आके बिठाया ऐसा नहीं है, उन सबको हमने कंसीडर किया। जैसे इंडियन हम किसको कहते हैं, जो भारत के नागरिक है उनको हम इंडियन कहते हैं, और आप घूमने को गए अमेरिका में तो अमेरिकन हो जाएगी कि इंडियन ही रहोगी? आप तो इंडियन है, अभी आप दुबई में रहती हो तो आप इंडियन है ना? तो ये आपका जो धर्म है इंडियन लोगों का, तो वो तो आप कहीं भी हो, ऐसा नहीं कोई इंडिया में ही रहना चाहिए। ये जो कॉमन उनका जो कैरेक्टर है उसकी अपेक्षा से उनको हम जो ग्रुप्स में डालते हैं तो उसको कहते जीव समाज। अब 233 नंबर में, बादरसु में इंदिया बीती चौर इंदिया सन्नी सन्नीय पज्जत्ता पज्जत्ता एवं ते चौदसा होती। देखो ये 14 इसमें बता दिए, लिखा ना बादर सुहुम ए इंद्रिय, यानी बादर और सूक्ष्म एक इंद्रिय, फिर बी यानी द्विंद्रिय, यानी खाली उसका बी लिखा, फिर ती लिखा, फिर चौ लिखा और सबको मिलकर इंद्रिय लिखा। यानी शॉर्ट में कैसे लिखते देखो ना, बी ती चौ इंद्रिय, यानी बी इंद्रिय, हाँ गाथा में बी ती चौ इंद्रिय, यानी विन्द्रिय तीन्द्रिय चतुर इंद्रिय, असन्नी सन्नी ये हो गए पंचेंद्रिय, और उसके पज्जत्ता अपज्जत्ता पर्याप्त और अपर्याप्त, ऐसे ये 14 जीव समास होते। नीचे उसका अर्थ देखते हैं अभी, देखो बादर एकेंद्रिय सूक्ष्म एकेंद्रिय द्विंद्रिय तीन्द्रिय चतुरिंद्रिय संगी पंचेंद्रिय और असंगी पंचेंद्रिय, ये सातों प्रकार के जीव पर्याप्त और अपर्याप्त के भेद से दो प्रकार के होते हैं, यानी 7 × 2 = 14 हो गए। इसलिए जीव समास के कुल भेद 14 बतलाए हैं। अब आगे अगला कॉलम देखना, हम अगली प्ररूपणा 419 पेज पर देखना। देखो हमने गुणस्थान देखा, जीव समास देखा, अभी अगला है वो प लिखा है, उसका अर्थ होता है पर्याप्ति। तो ये जो 14 जीव समास है उसमें पर्याप्ति किसके कितने होती है, यानी जो पर्याप्त जीव है उनमें हम कहेंगे इनमें इतनी पर्याप्ति होती है, और उनके जो अपर्याप्त जीव है उनको कहेंगे इतनी अपर्याप्ति होती है, क्योंकि पर्याप्तियाँ पूर्ण नहीं होती, यानी इतनी अपर्याप्ति होती है ऐसा कहेंगे। देखो 6 पर्याप्तियाँ 6 अपर्याप्तियाँ, ये किसमें होगी, संगी जीवों में, संगी पंचेंद्रियों में 6 पर्याप्तियाँ, और जो संगी अपर्याप्त जीव है उनमें 6 अपर्याप्तियाँ पाई जाती है, 5 पर्याप्तियाँ 5 अपर्याप्तियाँ। तो 5 पर्याप्तियाँ और अपर्याप्तियाँ कुन में होती है, तो असंगी में भी है, चतुरिंद्रिय में, तीन्द्रिय में, द्विंद्रिय में, असंगी से लेकर द्विंद्रिय तक 5 पर्याप्तियाँ या अपर्याप्तियाँ होगी। और 4 पर्याप्तियाँ 4 अपर्याप्तियाँ हैं तो यह एक इंद्रिय जीव में पाई जाती है, तथा अतीत पर्याप्ति भी है। अतीत पर्याप्ति यानी सिद्धों की कोई पर्याप्ति नहीं है, वहां तो कोई शरीर ग्रहण करने का कार्य नहीं है तो वहां पर्याप्ति भी नहीं है। आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, इंद्रिय पर्याप्ति, आनापान पर्याप्ति, आनापान कहो या श्वासोश्वास को एक ही बात है, भाषा पर्याप्ति और मन पर्याप्ति, ये 6 पर्याप्तियां संगी पर्याप्तकों की होती है, यानी पर्याप्तकों में हम 6 पर्याप्ति कहेंगे, और इन्हीं संगी जीवों के अपर्याप्त काल में पूर्णता को प्राप्त नहीं हुई, यही 6 अपर्याप्तियाँ होती है। अपर्याप्त जीवों में क्या होता है, 6 पर्याप्ति तो शुरू होती है परंतु पूर्ण नहीं होती, तो उनको कहेंगे यही 6 अपर्याप्तियाँ है, ख्याल है। अब असंगी की बात कर रहे हैं, मन पर्याप्ति के बिना उक्त 5 ही पर्याप्तियाँ, उक्त यानी भी शरीर आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, इंद्रिय पर्याप्ति, श्वासोश्वास पर्याप्ति और भाषा पर्याप्ति, मन को छोड़ देना, असंगी पंचेंद्रिय पर्याप्तों से लेकर द्विंद्रिय पर्याप्तक जीवों के होते हैं, क्योंकि उनमें भी वचन है ना, इसलिए भाषा पर्याप्ति उनमें भी है। अपर्याप्त अवस्था को प्राप्त उन्हीं जीवों के, अपूर्णता को प्राप्त वे ही 5 अपर्याप्तियां कहलाती है। देखो पर्याप्तियों के बारे में जितनी पर्याप्ति पर्याप्तकों के है उतनी ही अपर्याप्तियाँ अपर्याप्तों के हैं, प्राणों में डिफरेंस होगा, ख्याल है ना, पर्याप्ति तो उतनी ही रहती है, वो पूरी हुई क्या नहीं हुई इतना ही डिफरेंस है। अब एकेंद्रियों में भाषा पर्याप्ति भी नहीं होगी, तो भाषा पर्याप्ति के बिना यही चार पर्याप्तियाँ एकेंद्रिय पर्याप्तकों के होती है, और इन्हीं एकेंद्रिय जीवों के अपर्याप्त काल में अपूर्णता को प्राप्त, यानी जिनकी पूर्णता नहीं हो रही है, ऐसी यही चार अपर्याप्तियाँ होती है। तथा इन छह पर्याप्तियों के अभाव का नाम अतीत पर्याप्ति कहते हैं, यानी सिद्धों के वो अतीत पर्याप्ति कहेंगे। कहा भी है, अब कहा भी है ने अगले पेज पर वो 234 नंबर की गाथा हम कहेंगे। उत्तम चयन जो कहीं दूसरी गाथा में से यहाँ उद्धरण देते हैं। आहार शरीर इंद्रिय पज्जति आण पाण भासमणो चत्तारि पंच छप्पिय ए इंद्रिय विगल सन्नीनम। नीचे उसका अर्थ देखे हैं, आहार शरीर इंद्रिय आनापान भाषा और मन, ये छह पर्याप्तियां हैं। उनमें से एकेंद्रीय जीवों के चार, ऊपर गाथा में लिखा ना चत्तारी यानी चार, विकलत्रय और असंगी। विकलत्रय का अर्थ क्या मालूम है? हाँ, दो इंद्रिय वाले, तीन इंद्रिय वाले, चतुर इंद्रिय, इसको कहते हैं विकलेंद्रिय, या तीनों को मिलकर विकलत्रय भी कहते हैं। तो विकलत्रय और असंगी पंचेंद्रियों के पांच, और संगी जीवों के छह पर्याप्तियां होती है। अब अगली गाथा हम पढ़ेंगे, ये यही विषय अन्य ग्रंथों में जो आया है उसकी उन्होंने गाथा यहाँ हमें बता दी। ये गोमट सार जीव कांड में ये गाथाएं आती है, उसकी बात यहाँ ही लिख दी उन्होंने। जह पुन्ना पुन्नाइम घ्य गढ़वत्थाई आई दौवाइम तह पुन्ना पुन्ना हो पज्जत्य रामुणे यौवा। पुण्य ने पूर्ण, जैसे हम कुछ घट बना रहे हैं तो जब तक पूर्ण नहीं होता तो क्या कहेंगे? अपूर्ण है। वस्त्र बुन रहे हैं, वो लूम पर कहते ना, मार्ग पर, तो क्या कहते? वो अभी बन रहा है, अपूर्ण है। और घर कोई बांध रहा है, कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो जब तक वो पूरा नहीं होता है तो हम कहेंगे अपूर्ण, और पूरा होने पर कहेंगे पूर्ण। उसी का यहाँ दृष्टांत दिया है। देखो अभी इसका अर्थ हम देखते हैं। जिस प्रकार गृह घट और वस्त्र आदि द्रव्य पूर्ण और अपूर्ण दोनों प्रकार के होते हैं, जब तक चल रहे, उसका काम चल रहा है तब तक अपूर्ण कहेंगे, और हो जाने पर हम उसको पूर्ण कहेंगे। उसी प्रकार जीव भी पूर्ण और अपूर्ण दो प्रकार के होते हैं। पर्याप्त का ही अर्थ होता है पूर्ण, और अपर्याप्त यानी अपूर्ण। उनमें से पूर्ण जीव पर्याप्तक और अपूर्ण जीव अपर्याप्तक कहलाते हैं। अभी हमने देखा ना, सात पर्याप्तक और सात अपर्याप्तक, यानी जिनकी वो पर्याप्ति पूर्ण होती है उनको पर्याप्तक कहते हैं, और जिनकी पूर्ण नहीं होती उनको अपर्याप्तक जीव कहते हैं। अभी अपर्याप्तकों में दो प्रकार आते हैं, लब्धि अपर्याप्तक और निर्वृत्ति अपर्याप्तक। ये लब्धि अपर्याप्तक क्या होते हैं? कि उनके अपर्याप्त नाम कर्म होता है, यानी उनकी पर्याप्ति कभी पूरी होती नहीं है। एक भी पर्याप्ति पूरी होने के पहले पहले वो मर जाते हैं, भले एकेंद्रीय हो या पंचेंद्रीय हो। उसकी जितनी पर्याप्ति है ना उसके खाते में, चार हो या पांच हो या छह हो, एकेंद्रीय हो या विकलेंद्रीय हो या संगी हो, तो उसकी बिगिनिंग तो हो गई थी, मगर एक भी पूरी होने के पहले जो शॉर्ट लाइफ होती है उनकी और वो मर जाता है, उसको कहते हैं लब्धि अपर्याप्तक। तो वो एकेंद्रिय में भी होते हैं, मनुष्य में भी सम्मूर्छन मनुष्य कहलाते हैं, लब्धि अपर्याप्तक होते हैं। तो उनकी लाइफ स्पैन बहुत छोटी होती है, एक श्वास के 18वें भाग में मर जाते हैं। श्वास यानी वो हम श्वास लेते छोड़ते वो श्वास नहीं, तो नाड़ी जो है ठक और ठक, उसके बीच में कितना अंतर है, उसको एक श्वास कहते हैं। और उसका 18वां भाग, 1/18 ऑफ दैट, तो उतने काल उनकी लाइफ स्पैन है, और उतने काल में मर जाते हैं। तो ऐसे ये जो अपर्याप्तक जीव हैं, तो उनकी भी पर्याप्तियां तो चालू हो गई मगर हुई नहीं एक भी पूर्ण, और वो मर गए, वो लब्धि अपर्याप्तक। और निर्वृत्ति अपर्याप्तक यानी जो पर्याप्त नाम कर्म वाले जीव है, परंतु अभी पर्याप्ति चालू कर दी है, परंतु एक अंतर्मुहूर्त लगेगा पूर्ण होने में, तो तो उतने काल तक उनको अपर्याप्त कहेंगे। यानी उसमें भी दूसरी जो शरीर पर्याप्ति है वो पूर्ण होने पर उनको पर्याप्त कह देते हैं, बाकी पर्याप्ति पूर्ण होती रहती है। शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने के पहले पहले उनको कहते हैं ये अपर्याप्त जीव है। निर्वृत्ति, निर्वृत्ति ने भी रचना चल रही है परंतु अभी पूरी नहीं हुई है तो उसको कहेंगे निर्वृत्ति अपर्याप्त। और जो अपर्याप्त नाम कर्म वाले हैं उनको कहेंगे लब्धि अपर्याप्त। ये दो प्रकार के अपर्याप्त जीव। तो यहां ये जीव कोई पर्याप्तक है और कोई अपर्याप्तक है। अब यहां कहते हैं प्राणों की बात। अभी अगला कॉलम कौन सा है? हाँ देखो, लब्धि अपर्याप्त यानी उनकी लब्धि प्राप्ति किसकी है? अपर्याप्ति है। पर्याप्तियों की लब्धि यानी प्राप्ति नहीं होती, यानी उनके पर्याप्ति जो है वो पूर्णता कभी नहीं होती। पर्याप्ति यानी वो शक्ति की पूर्णता कभी नहीं होने वाली, उसके पहले पहले वो मरते हैं, उसको कहते हैं लब्धि अपर्याप्त। ऐसे जीवों को क्षुद्र भव वाले कहते हैं। लब्धि पर्याप्त नाम का कोई नहीं होता, लब्धि अपर्याप्त ऐसा एक ही है, वो उसको कहते हैं लब्ध्य। धि प्लस अ मिलकर ध्य होता है लब्ध्य, तो लब्ध्य पर्याप्त कह सके, है ना? लब्धि ई प्लस अ का यह हो जाता ना, लब्ध्य पर्याप्तक। तो लब्धि पर्याप्तक एक टाइप, निवृत्ति अपर्याप्तक वो दूसरा टाइप। ये दोनों ही अपर्याप्त में हो गए, और पर्याप्त जीवों का एक अलग। हाँ तो ये जो हम कॉलम देखना, देखो इसमें पहला गुणस्थान का था, दूसरा जीव समास का, तीसरा पर्याप्तियों का। देखो उसमें कैसे लिखा है, छह पर्याप्त छह अपर्याप्तियां, यानी कौन उन जीवों के कौन कौन कितने होते हैं उसकी बात है। पांच पर्याप्ति पांच अपर्याप्ति, चार पर्याप्ति चार अपर्याप्ति, और कोई अतीत पर्याप्ति जीव यानी जो सिद्ध भगवान है वो अतीत पर्याप्ति वाले। और अगला वाला जो है प्राण वाला है कॉलम। तो प्राण में भी देखो, अभी यहाँ कॉलम अपने टेबल देख ही लिया है तो उसमें पहले देखते बाद में पढ़ेंगे हम प्राण वाला। उसमें कैसे लिखा है देखो, दस और सात ये किसके हो सकेंगे प्राण? हाँ दस प्राण पर्याप्त, कौन से पर्याप्त? संगी, संगी पंचेंद्रिय पर्याप्तकों के दस प्राण है और उसी के अपर्याप्त में सात प्राण है। कौन से नहीं है तीन, कौन से नहीं है? हाँ टेक योर टाइम। हाँ मन बल नहीं है, वचन बल नहीं है, हाँ श्वासोश्वास नहीं है, बहुत अच्छा। हाँ तीन नहीं है, इसलिए दस में से तीन गए तो सात ही रहेंगे, बराबर। अब असंगी जीवों के नौ, वो मन बल उनके होता ही नहीं है इसलिए नौ ही लिखे पर्याप्त जीवों के। और अपर्याप्त में से अभी नौ में से दो निकालना है, वचन बल और श्वासोश्वास, तो नौ में से दो गए सात रहेंगे उनके। तो हम ऐसे लिखेंगे खाली दस सात नौ सात, यह हमें समझना चाहिए कि पर्याप्तों के है या अपर्याप्तों के। आगे लिखा है आठ और छः। अब नौ जो असंगी वाला था उसमें से एक कर्णेन्द्रिय चला गया, इंद्रिय प्राण, कर्णेन्द्रिय प्राण, तो बाकी चार इंद्रिय प्राण रह गए, है ना? तो उसके वो आठ प्राण होते हैं, तो चतुर इंद्रिय के आठ और छः। इंद्रिय के कितने हैं? सात और पांच, तीन इंद्रिया, वचन बल काय बल श्वासोश्वास और आयु। हाँ और द्विंद्रियों को छः और चार, बराबर। एक इंद्रियों के कितने हैं? एक स्पर्शन इंद्रिय, काय बल प्राण, हाँ श्वासोश्वास है, बहुत अच्छा, आयो है, तो चार हो गए। और उसी के अपर्याप्त में, बहुत अच्छा, श्वासोश्वास नहीं, तो कितने? तीन रह गए। हाँ यहाँ आगे चार और दो भी लिखा है, तो तेरहवें गुणस्थान में अभी वो इंद्रियों के द्वारा जानते नहीं है, तो इंद्रिय प्राण उनके नहीं है, है ना। तो कौन कौन से प्राण हैं, मन से भी नहीं जानते, तो एक वचन बल है, हाँ काय बल, श्वासोश्वास, आयु, बहुत अच्छा, ये चार हो गए हैं। और दो लिखे हैं, उन्हीं की अपर्याप्त अवस्था कब हो सकती है 13वें गुणस्थान में, हाँ समुद्घात में, जब केवली समुद्घात होता है तो क्या होता है, मूल शरीर से कुछ आत्म प्रदेश बाहर निकलते, बराबर, तो बीच में उनका यानी चार होते हैं समुद्घात, चार स्टेप्स है उसके, पहले दंड होता है यानी खंबे जैसा पूरा लोकाकाश से ऊपर से नीचे तक फैलते हैं, केवली समुद्घात के ये चार भेद हैं, भेद यानी एक एक समय में वो स्टेप बाय स्टेप प्रसरण होता है उसका, फैलते हैं और फिर सुकुड़ते हैं, आत्म प्रदेश पूरे लोकाकाश में फैल जाते हैं, तो फैल जाते तो एक समय में पूरे लोकाकाश में नहीं फैलते, पहले समय में क्या होता है जैसे शरीर है तो ऐसे ही उतने प्रोपोर्शन में लोकाकाश के ऊपर से नीचे तक, वो बात वाले को छोड़ दो, यानी इतने सारे नियरली 14 राजू इतने ऐसे लंबे खंबे जैसे फैल होता है, फैलते हैं, तो उसको कहते हैं दंड, दंड नाम का समुद्घात, पिलर जैसे खंबे जैसे, फिर क्या होता है वो खंबे में से ऐसा फैलते हैं लोकाकाश के एंड तक ऐसा, तो उसको कहते हैं कपाट, उसके बाद क्या होता है फिर ऐसे भी फैल जाएंगे यहां से भी ऐसे फ्रंट बैक की तरफ से भी पूरे लोकाकाश के एंड तक जाएंगे, वात वाले को छोड़कर, आड़े तो फैले ही थे, अब हॉरिजॉन्टली लेने फ्रंट और बैक की साइड में भी फैलेंगे, तो उसको कहेंगे प्रतर, प्रतर यानी पूरे लोकाकाश में फैलते हैं एक्सेप्ट वात वाले, बाहर का वात वाले छोड़कर, और अंतिम समय में पूरे लोकाकाश में वात वलय सहित उसको कहते हैं लोक पूरण, पहले समय में दंड, फिर कपाट, कपाट कपोत नहीं कपाट, कपाटे हम खोलते ना कपड़ जैसा कपाट, और फिर प्रतर और लोक पूरण, ये चौथे समय में लोक पूरण होता है, फिर अभी समेटना चालू हो जाता है, पांचवे समय में फिर प्रतर में आते हैं, छठे समय में फिर कपाट में, सातवें समय में दंड, आठवें समय में मूल शरीर, यानी इस तरह से ये आठ समयों में समुद्घात हो जाता है, हाँ, तो जब हम दंड छोड़कर जब कपाट हो जाता है तब वहां मिश्र का योग कहलाता है, और प्रतन प्रतर लोकपूरण और फिर प्रतर, ये जो तीन समय है तब वहां कारमाण का योग होता है, वो योग की बात आएगी तभी उसमें चर्चा करेंगे हम उसके अधिक, तो वहां ये कौन सा है, अपर्याप्त है, हाँ क्योंकि मूल शरीर में प्रवेश करेंगे तभी फिर दोबारा वो छह पर्याप्ति होगी उनके, इसलिए इस काल में उसको अपर्याप्त जीव कहने में आता है, तो 13वें गुणस्थान में ये अपर्याप्त है, वो विग्रह गति वाला अपर्याप्त नहीं, यहाँ जो योग जो है वो मिश्र योग है और कर्मण का योग है, इसलिए यहाँ अपर्याप्त कहा जाता है, इसलिए वहां प्राण कितने लिखे, दो, चार और दो लिखे ना, यानी वहां कौन से है, काय बल प्राण है और आयु है, वचन बल नहीं है, श्वासोश्वास नहीं है, हाँ समुद्घात में, अब एक प्राण किसकी बात है, एक ही प्राण किसको है, 13वें की बात देखिए अभी, हाँ 14वें में एकमात्र आयु प्राण है, न श्वासोश्वास है, न काय बल है, न वचन बल है, कुछ एकमात्र आयु प्राण है, और अतीत प्राण में कौन है, सिद्ध भगवान, ये द्रव्य प्राण से अतीत हो गए, भाव प्राण तो है, चैतन्य भाव प्राण है, केवल ज्ञान केवल दर्शन रूप उपयोग है, ये बात चल रही है, अब इसका जो यहाँ से वर्णन जो है वो हम कल पढ़ेंगे इसको, अभी जो प्राणों की बात हमने देखी उसी को पढ़कर फिर हम आगे की प्ररूपणाएं भी कल देखेंगे। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक,